नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
हेलो बच्चों, मोबाइल वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर राज राजीव चंद्रशेखर सिंह बालिका उच्च विद्यालय वासुदेवपुर मुंगेर। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मानसून क्या है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और इसकी शाखाओं के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मानसून क्या है? मानसून मौसमी हवाओं को कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसीम से हुई है। मानसून भाप से भरी उन हवाओं को कहते हैं जो एक निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर चलती है। ये हवाएं 6 माह तक सागर से थल की ओर तथा 6 माह थल से सागर की ओर चला करती है। ग्रीष्म काल में विषुवत रेखा के निकट निम्न वायु दाब क्षेत्र विस्तृत होने के कारण धरातल से पवने निरंतर ऊपर उठती रहती है और ये पवने 30 डिग्री अक्षांशों के निकट नीचे उतरती है तो वहाँ अधिक वायुदाब हो जाता है। अतः इन अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर अस्थायी धरातलीय पवने चलने लगती है, जिनके द्वारा एक कोष का निर्माण होता है जिसे हेडली सेल कहा जाता है। राम मूर्ति तथा जम्मूनाथन विद्वान के अनुसार केवल राज्य की सीमा के निकट वायुमंडल में समुद्र तल से लगभग 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर एक भूमध्य रेखीय अगाध का जन्म हो जाता है जो मानसूनों की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। वहीं कोटेश्वरम प्रभृति अंतरिक्ष विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैला रहता है। दूसरी ओर सूर्य की विकिरण शक्ति के कारण तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अतः पूर्वी जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटने वाला वह प्रवाह है जो देशांतरीय संचालन के कारण उत्पन्न होता है। फ्लोन नामक विद्वान कहते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के विषय में उन्होंने अध्ययन किया है कि तिब्बत का पठार मानसूनों की उत्पत्ति में भाप के इंजन की भांति कार्य करता है। इसके फलस्वरूप ही शीतकालीन पवनों की दिशा में परिवर्तन होकर दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। फ्लोन की यह भी मान्यता है कि उष्णकटिबंधीय जेट का विस्तार दक्षिण पश्चिम मानसून के समय उत्तरी गोलार्ध की परिधि के आधे से अधिक भाग में होता है। इन्होंने उष्णकटिबंधीय जेट की स्थिरता, उसकी स्थिति, दिशा एवं तीव्रता तथा उसकी सामान्य अवस्था पर भी प्रकाश डाला है। इसके अनुसार उष्णकटिबंधीय जेट उत्तरी गोलार्ध की एक अद्वितीय संरचना है, जबकि 3 दक्षिणी महाद्वीपों में यह दक्षिणी ग्रीष्मकाल में सबसे दुर्लभ दशा में रहने वाला क्रम है। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे मानसून का फूट पड़ना क्या होता है। जून के प्रारंभ में अत्यधिक निम्न वायु दाब एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर की ओर से अत्यंत तीव्र गति से देश की ओर बढ़ते हैं। इस समय अचानक ही तीव्र मेघ गर्जन होता है तथा बिजली चमकती है। इसके साथ ही तेज वर्षा आरंभ हो जाती है। इसी को कहते हैं मानसून का फूट पड़ना। तो आगे हम लोग जानेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने दक्षिण प्रायद्वीपीय की स्थिति के कारण 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इसमें से एक शाखा बंगाल की खाड़ी से और दूसरी अरब सागर की शाखा के नाम से देश में प्रवेश करती है। यह बच्चों यही दोनों शाखाएं मुख्य है। बंगाल की खाड़ी का मानसून कोलकाता में 7 जून के लगभग वर्षा आरंभ करता है, जबकि अरब सागर का मानसून केरल में 1 से 5 जून के लगभग पहुंचता है। अब शाखा के विषय में हम लोग जानेंगे। पहली शाखा है अरब सागरीय मानसून शाखा। अरब सागरीय मानसून की यह शाखा सर्वप्रथम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से आकर टकराती है। ये पहाड़ियाँ इन पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, अतः ये पवने 900 से 2100 मीटर तक ऊपर उठ जाती है और असाधारण रूप से तत्काल ठंडी होकर पश्चिमी तटीय मैदानों में लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा कर देती है। पश्चिमी घाट को पार करते समय दक्षिण के पठार के पूर्व की ओर उतरने पर ये पुनः गर्म होने लगती है, साथ ही इनमें नमी की मात्रा भी बहुत कम रह जाती है। फलतः पठार के भीतरी भागों में वर्षा कम होती है, इसलिए यह क्षेत्र वृष्टि छाया का क्षेत्र कहा जाता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटी में होती हुई कुछ वर्षा कर छोटा नागपुर पहुंचती है। यहां इससे लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छोटा नागपुर पठार के निकट पहुंचकर यह शाखा बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से मिल जाती है। अरब सागरीय मानसून का उत्तरी भाग सिंधु के डेल्टा और राजस्थान को लांघता हुआ प्रायः बिना वर्षा किए ही सीधा हिमालय पर्वत से जाकर टकराता है और वहां धर्मशाला के निकट घनघोर वर्षा करता है। इसके द्वारा सिंधु और पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। केवल अरावली पर्वतों के दक्षिणी भागों में लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा एवं अरावली के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गंगा के मैदान की शाखा भी पंजाब में पहुंचती है, परंतु पर्वतों से नीचे उतरने के कारण शुष्क हो जाती है। फलतः थार मरुभूमि इस दूसरी मानसून शाखा से भी वर्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूर्वी शाखा बंगाल की खाड़ी को पार करके भारत के पूर्वी भागों में प्रवेश करती है। भारत में ये हवाएं सबसे पहले मेघालय पठार पर स्थित गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के पूर्व से पश्चिम फैले हुए क्रम से टकराती है और इन पहाड़ियों के समुद्राभिमुख ढालों पर घनघोर वर्षा करती है। यहाँ मानसून पठार पर खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी नामक स्थान पर संसार भर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इन मानसून की शाखा एक है पश्चिम बंगाल को पार कर पूर्वी हिमालय से जाकर टकराती है। इस शाखा द्वारा पर्वतों की तराई प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। हिमालय पर्वत बहुत ऊँचा है, इसलिए ये पवने उसे पार नहीं कर पाती है। अतः इन पर्वतों की दक्षिणी ढालों पर घनघोर वर्षा होती है बच्चों, जबकि उत्तरी ढाल शुष्क रह जाते हैं। ज्यों ज्यों यह शाखा पश्चिम की ओर बढ़ती है, त्यों त्यों शुष्क होने के कारण वर्षा भी कम हो जाती है, क्योंकि यह नमी के स्रोतों से दूर हो जाती है। इसलिए गंगा के मैदान के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
तो दोस्तों ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।